जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین علم دین کے سیکھنے کے بڑی فضیلتیں ہیں برکتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طالب علم دین سے بہت پیار ہے اس کا اندازے سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف حصوں میں بیٹھا ہوا دیکھا تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان عبادت کے اندر مصروف ہیں اور کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف لے آتے ہیں کہ جو علم دین سیکھ رہے تھے تو الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کے جو سلسلے ہیں تو وہ علم دین سکھانے میں مصروف عمل رہتے ہیں مدنی چینل کا ہر سلسلہ الحمدللہ علم دین کی بہاروں پر مشتمل ہوتا ہے اور دار الافتاء اہل سنت بھی ان سلسلوں میں سے ایک نمایاں اہم ترین سلسلہ ہے جس میں شرعی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے سلسلے کا آغاز شروع کرنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دار الافتاء اہل سنت کے اس سلسلے میں شفیق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں
کیا بات ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آج ہم احکام کے حوالے سے کچھ بطور خاص ہیں نماز پڑھنی بھی چاہیے اہتمام بھی کرنا چاہیے مخصوص بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں چاہے وہ مرض کے حوالے سے ہوں یا بس اوقات دیگر کچھ ایسے عوارض عارضے آ جاتے ہیں کہ جس میں عام روٹین سے ہٹ کر مسائل درپیش ہوتے ہیں تو آج سلسلے میں جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ٹاپک بطور خاص ہے وہ مریض نماز کیسے پڑھے بعض اوقات آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں اور بعض اوقات ویسے جسمانی طور پر بھی کچھ ایسے عوارض ہیں مرض لاحق ہو جاتے ہیں کچھ معذور بھی ہو جاتے ہیں تو ہر ایک اعتبار سے شریعت مطہرہ بڑی ایک واضح تعلیمات وہ اس کے بیان فرماتی ہے تو یہاں سے ہی ہم جمیل صاحب آغاز کچھ کرتے ہیں آپریشن ہونے کی صورت میں بالخصوص آنکھوں کے جب آپریشن ہوتے ہیں تو اب ڈاکٹر حضرات کی طرف سے اس کی بڑی ایک تلقین ہوتی ہے کہ آپ سجدہ اتنے عرصے تک نہ کریں پانی کے استعمال کے حوالے سے کہ اس میں آپ یہ احتیاط برتیں اس میں یہ کریں تو اس میں کئی مریض بطور خاص وہ جو پوری زندگی ایک نماز پڑھنے کا معمول رہا ہے لیکن اس حالت میں پھر وہ پریشانی میں آتے ہیں کہ ہمیں شریعت کیا چھوٹ دیتی ہے کتنی رخصت ہے اور کتنی نہیں ہے اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی
جو مسئلہ بالخصوص آپ نے آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے بتایا ہے تو اب آج کل جو آپریشن کا سلسلہ ہے پہلے کے مقابلے میں اب کافی جدت بھی اس میں آتی جا رہی ہے اور آپریشن کا جو معاملہ ہے تکلیف بھی کم ہوتی ہے آپریشن جو آج کل آنکھوں کے نارمل جو آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر حضرات کی طرف سے ایک تو مریض کو اپنی آنکھوں کو روشنی سے تیز روشنی سے بچانے کا جہاں کہا جا رہا ہوتا ہے वहीं मरीज को इस बात की तरफ भी पाबंद किया जाता है कि आपने अपने आप को जैसे सजदे वाली कैफियत में झुकना होता है,
झुकने वगैरह,
तो सिर्फ नमाज ही नहीं अलावा नमाज में भी आपने झुकना नहीं है।
ठीक है,
झुकने से जो ऑपरेशन जो हुआ होता है उसमें खराबी यानी रिजल्ट मुस्बत आने के बजाय नेगेटिव आ सकता है, एक तरह से ऑपरेशन का फायदा ना हो शायद, ऐसी कैफियत होती है। तो अगर मरीज को तबीब हाजिक मुसलमान माहिर तबीब डॉक्टर इस बात का हुक्म दें कि आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, इस दौरान आपने सजदे की हालत में जो नमाज का ये फरीजा है, नॉर्मल अंदाज का जो सजदा है, वो नहीं करना और वरना तकलीफ का मामला हो सकता है। तो इस सूरत में मरीज के लिए ये रियायत है कि अब वो सजदा करने के बजाय वो इशारा कर ले।
ठीक,
मिसाल के तौर पे खड़ा होना मुमकिन है तो खड़े होकर कयाम कर रहा है, रुकू करना ये इसमें भी झुकना पाया जाता है, और सजदे में बकायदा जमीन पर पेशानी रखकर सजदा किया जाता है। तो अगर रुकू करने में झुकना ये भी अगर आंख के लिए मुजिर हो और सजदे के अंदर सजदा करने की कैफियत भी मुजिर हो, तो इस सूरत में इस मरीज को इस बात का इख्तियार है कि वो रुकू करने के लिए झुके। ठीक है, जो एक नॉर्मल रुकू होता है कमर बिल्कुल सीधी की जाती है, ठीक है, जो सुन्नत भी है, और रुकू का अदना दर्जा यह है कि इतना झुके कि अपने घुटनों तक हाथ पहुंचा ले, अगर इस कैफियत में आंख के लिए नुकसानदेह है ये अंदाज, तो अब इसकी रियायत है कि वो रुकू के लिए बैठ कर थोड़ा सा झुक ले।
सही।
अच्छा, अब सजदे का मरहला आएगा तो सजदे में रुकू के मुकाबले में ज्यादा झुके, जैसे रुकू में अगर इतना झुका है समी अल्लाह लिमन हमीदा के नॉर्मल बैठ गया, अब मामला आएगा सजदे का तो सजदे में रुकू के मुकाबले में ज्यादा झुके, ताकि रुकू और सजदों के अंदर डिफरेंस रहे, फर्क रहे। तो हत्ता कि अगर आंख का ऑपरेशन किसी की इस नोयत का हो जाए, इस दर्जे हो जाए कि वो बैठना भी उसके लिए मुश्किल हो जाए और लेट कर ही वो नमाज पढ़ सकेगा, तो भी शरीयत मुतहरा ने इसको इस बात का इख्तियार दिया है कि जिसके लिए बैठ कर भी नमाज पढ़ना दुश्वार हो रहा है, रुकू के लिए झुकना भी दुश्वार हो रहा है, तो अब उसके लिए फिर यह है कि बैठ कर नमाज दुश्वार हो जाए तो लेट कर भी वो नमाज पढ़ सकता है।
लेट कर भी पढ़ सकता है, लेट कर भी कोई इसका कोई खास कैफियत होती है ये इशारे वगैरह लेट कर, यानी सर का जो इशारा करना होता है लेटे लेटे?
लेट कर नमाज पढ़ने के जब भी जिस भी पोजीशन में शरीयत मुतहरा ने कंडीशन में जहां रियायत रखी है, तो अब ऐसे मरीज को नमाज पढ़ते वक्त इसको इख्तियार है। मिसाल के तौर पे अगर इसका जैसे इस वक्त किबला मेरे दाएं जानिब को है,
ठीक है,
फैजान मदीना का जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक मेरा जो हाथ का इशारा है ये किबले की डायरेक्शन। अब अगर किसी मरीज का बेड यूं लगा हुआ है,
अच्छा,
ठीक है, और वो बैठ नहीं सकता, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, लेटा हुआ ही है, अब उसको इस बात का इख्तियार है कि जिस तरह सीधी करवट पर लेटा जाता है तो ये इस करवट पे लेट जाए।
ठीक है,
ठीक है, अच्छा, किबला इस तरफ है,
सही,
तो अब ये उल्टी करवट पे लेट जाए और अपने सीने को किबले की जानिब कर ले। एक सूरत यह कि दाई कर जानिब किबला है तो दाई करवट लेट जाए, बाई जानिब किबला है तो उस जानिब को लेट जाए। एक सूरत यह है कि किबला सामने है,
सामने,
या ये बेड को बआसानी, बास कमरे ऐसे होते हैं जिसमें गुंजाइश होती है कि वो बेड को, पलंग को, चारपाई को, मरीज जिस बेड पे लेटा है उसको अगर वो किबले की जानिब किया जा सकता है इस अंदाज में कि मरीज अगर बैठे तो उसका मुंह काबे की तरफ हो,
ठीक है,
इस अंदाज में बेड को कर लिया जाए। अब मरीज जो है ना वो लेट जाए अपने बेड पे, यानी जिसमें बैठ कर नमाज पढ़ने की कुदरत ना हो तो वो लेट कर पढ़ेगा, तो जो लेट कर पढ़ेगा उसका तरीका ये बताया जा रहा है कि वो लेट जाए। लेटने की सूरत में एक तो नॉर्मल हम जो तकिया यूज करते हैं,
ठीक है,
वो तकिया तो बिल्कुल जमीन पे लगा होता है और हमारा सर आसमान की तरफ होता है, तो अब चूंकि नमाज में मरीज को किबले की तरफ रुख करना है तो किबले शरीफ का रुख करने की सूरत में इसको चाहिए कि अपने तकिए दो एक बढ़ा ले,
कोई ऐसी चीज के थोड़ा सा ये उठ जाए।
जब बाज बेड होते हैं जो मरीजों के पेशेंट के होते हैं वो आमतौर पे उठ जाते हैं,
उठ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह वो थोड़ा सा उठ जाए ताकि उसका जितना मुमकिन हो सीना चेहरा वो काबतुल्ला शरीफ की तरफ हो। अब इस सूरत में पांव फैलाने का जो मरहला है, तो अपने पांवों को किबले की तरफ इस तरह ना फैलाए कि पांव के तलवे काबतुल्ला शरीफ की रुख पर हों, कि इस तरह काबतुल्ला शरीफ की रुख की जानिब अपने कदमों को पांवों को फैलाना ये मकरूह है। जिसके लिए मुमकिन हो तो वो अपने पांवों को फोल्ड कर ले, जैसे आमतौर पे होता है कि ले रहे होते हैं
सामने बिल्कुल किबला रुख होगा तो आप पांव भी उस तरफ होंगे, तो जितनी
जितना मुमकिन हो। तो बाद मरीजों के लिए मुमकिन होता है कि वो घुटने ऊपर कर ले, तो घुटने साइड ऊपर होती है, पांव की साइड बेड पे हो जाए तो घुटने ऊपर हो गए, तो जिसके लिए मुमकिन है तो वो ये करे। अलबत्ता अगर कोई इतना बिल्कुल माजूर हो चुका है कि वो पांव भी नहीं हिला सकता और पांव भी उसके किबले ही की जानिब यानी तलवे पांव के फैले हैं, तो अब उसके लिए कराहत नहीं है। कराहत उस सूरत में जबकि बंदा पांव फोल्ड कर सकता है,
ठीक है, इसमें हर्ज भी नहीं है। पांव अगर होते भी उस तरफ तो कोई मामला नहीं।
अब इस सूरत में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे लेट के, तो यानी जैसे कोई शख्स लेटा है तो अल्लाह अकबर कहे, हाथ बांधे, सना आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फातिहा क़िराअत करे, अब मरहला आएगा रुकू का, तो अब ये लेटे लेटे जितना उठ सकता है थोड़ा सा रुकू के लिए उठे, यानी इशारा करे कि अब मैं अपने सर से इशारा करना है, आंखों या भवों इसका इशारा नहीं चलेगा, अपने सर को थोड़ा सा उठाए कि वो इशारा बन जाए कि अब ये रुकू में, यानी अल्लाह अकबर, अब ये रुकू की पोजिशन में, अब इस रुकू में जो तस्बीहात पढ़ी जाती है वो पढ़े, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाए समी अल्लाह लिमन हमीदा,
सही।
अब इसके बाद फिर अब सजदे में जाना है, तो जितना रुकू के लिए सर को उठाया था झुकाया था उससे कुछ ज्यादा ये सजदे के लिए अपने सर को झुकाएगा, सजदे की तस्बीहात पढ़ेगा, एक सजदा हो गया अल्लाह अकबर, अब दूसरे सजदे में जाएगा अल्लाह अकबर, फिर उसकी तस्बीहात पढ़ेगा, फिर अल्लाह अकबर, ये एक रकात हो गई, अब दूसरी रकात, फिर सना तहियात में यहाँ बैठना है तो अपने हाथों को जैसे पांव की तरफ कर ले, ये अंदाज जितना मुमकिन हो जिसके लिए वो इस अंदाज में नमाज पढ़ेगा। यानी इससे अंदाजा लगा लें शफीक भाई कि नमाज कितना अहम तरीन फर्ज है कि शरीयत मुताहरा ने आदमी के जहाँ तक वो नमाज की अदायगी के लिए शरीई अहकाम का मुकल्लफ है,
जी जी जी,
तो शरीयत मुताहरा ने उस पर नमाज को फर्ज रखा है, और ये हमें मजीद रियायतें भी नसीब फरमाई कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अहम तरीन पसंदीदा इबादत जो नमाज है दीन इस्लाम का रुकून है, तो हत्तल इम्कान कोई भी मुसलमान उसकी अदायगी से महरूम ना रहे। खड़े होकर पढ़ना जो बकायदा एक तरीका कार है उस पर कुदरत ना हो तो बैठ कर नमाज पढ़ ली जाए, बैठने पर कुदरत ना हो तो फिर हुक्म है कि लेट कर इशारों के जरिए नमाज पढ़ी जाए,
जहाँ भी उसके लिए जितना पॉसिबल है मुमकिन है, शरीयत की तरफ से रुख्सतें भी हैं कि वो इस अंदाज से नमाज पढ़े। इससे उन नाजरीन को भी और हर सुनने वाले को जो बिल्कुल जागते हुए होशो हवास की कैफियत में सब मामलात करते हुए जमील साहब ऐसी हालत में नमाज छोड़ दें तो कितने अफसोस वाली बात है, और जब एक नमाज भी कोई छोड़ता है तो उस शख्स का नाम बिला उजरे शरी एक नमाज भी को छोड़ता है तो उस शख्स का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जब तक वो उससे तौबा नहीं करता। और तौबा नमाज की ये तौबा तब ही तौबा सच्ची तौबा कहलाएगी कि पिछला जो नमाज का तर्क करने वाला अमल हुआ उस पर नदामत है और फिर उसके साथ साथ आइंदा तर्क ना करने का अज़्म है, फिर जो उसकी तलाफी है यानी उसकी कज़ा वगैरह वो भी उसको अदा करनी है। तो इस अंदाज़ से लिहाजा कभी भी नमाज वो बिला उज़र जो है वो इसको उज़र तो ख़ास वो ख़ास कैफियात हैं जब शरीयत किसी के ऊपर अब वो एक तरह का उस वक्त जो उसकी कैफियत यानी जिसको कहें कि नमाज उसको मुआफ हो गई,
ये कैफियत भी बाज मरीजों की होती है। मिसाल के तौर पे बाज मरीज तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल कोमे में चलेगा,
जी जी जी, जी, जी
कैफियत होती है ना, एक तो अपनी उम्र के इंतहा दर्जे और बीमारी की एक आखिरी स्टेज और उम्र का आखिरी स्टेज है उसमें अब वो अक्लो होश भी सलामत नहीं,
जी जी,
तो इस सूरत में ऐसे शख्स पर अगर छह नमाजों का वक्त गुजर गया
ऐसी जुनूनी कैफियत
ऐसी मतलब कैफियत में आ गया है कि अब अकलो होश भी जाते रहे, ठीक है, यानी जुनून की कैफियत हो गई या बीमारी इस तरह की हुई कि अकल पे गालिब आ गया, अब उसको बिल्कुल होश नहीं है, पर वो एक जिंदा लाश हम कहते हैं
एक तरह की,
इस सूरत में आम तौर पे कई कई हफ्ते, महीनों, कई कई दिनों तक मामला चला जाता है। तो अगर किसी शख्स के ऐसी कैफियत हो गई और 6 नमाजों का वक्त इस तरह गुजर गया कि वो बिल्कुल होश हवास में नहीं है, ठीक है, तो इस सूरत में उस पर ये नमाजें मुआफ, 6 नमाजें भी मुआफ, इसके आगे 10, 15, 20 दिन जितने भी वो इस हालत में रहता है तो इन दिनों की नमाजें इसमें मुआफ, लेकिन जब तक अक्लो होश सलामत है तो इस सूरत में इसको नमाजों की अदायगी करनी होगी। और अगर किसी की कंडीशन ऐसी हो गई, जैसे बाज होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो एक्सीडेंट में सर की चोटें ऐसी आ जाती हैं कि कभी कभार फिर वो आदमी जहाँ भर नहीं हो सकता,
सही,
तो होश हवास नहीं हो पाते, बहाल नहीं हो पाते, तो इस सूरत में भी अगर किसी की 6 नमाजें ऐसे वक्त में गुजर गईं, इस तरह गुजर गया वक्त के उसको होश नहीं आया, तो अब उन पर वो 6 नमाजें भी मुआफ है। और आइंदा जब तक होश नहीं आएगा तो ऐसी कैफियत में जितने दिन जितनी नमाजों के वक्त गुजरेंगे वो नमाजें उस पर भी फर्ज नहीं है। लेकिन जो नमाज से मोहब्बत करने वाले हैं शफीक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इन खतरनाक बीमारियों में भी जब होश में आते हैं ना,
जी, पहले नमाज
कर लो।
क्या बात,
जैसे कि इसका मैं वाकया बयान करूंगा, मेरे क्लास फेलो अल्लामा खलील मदनी,
जी जी,
अल्लाह ताला की उन पे रहमत हो,
आमीन,
तो उनका भी एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, उस सर की शदीद तरीन चोट आई जिसमें वो चंद दिन तक इसी हालत में रहे, यानी होश बहाल नहीं हुआ, ठीक है, और फिर उनका विसाल हो गया, शाबानुल मौज़म का महीना था। उनको जब भी होश आया ना थोड़ा सा भी, लेकिन वो नीम होश, नीम बेहोशी ही कहेंगे,
जी जी,
तो इस कैफियत में जब भी उनके जबान से लफ्ज निकला तो जाफर मुसल्ला लाओ
नमाज पढ़ने, इस तरह
जाफर उनके बेटे का नाम था, जाफर मुसल्ला लाओ नमाज पढ़नी है। तो नमाज से मोहब्बत, दीन की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके मुताबिक अमल, फिर माशाल्लाह बामल
आलिम दीन है, उस्तादुल हदीस थे, हदीस भी शरीफ पढ़ाते थे लाहौर के अंदर, और उनके माशाल्लाह सैकड़ों उनके शागिर्द भी हैं, अल्लाह करीम उनकी दीनी खिदमत को भी कबूल फरमाए। मैं भी अभी एक किसी का पंजाब में इयादत के लिए गया तो वो उनके बेटे बता रहे थे कि वालिद साहब उनके यही कैफियत है, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं मुसलसल ही इसी हालत में, इसी कैफियत में, कि अब वो अपनी होशो हवास में नहीं, और वो बता रहे थे कि हमारे वालिद साहब तो रजब और शाबान के रोजे भी तर्क नहीं करते थे, नफली रोजे, अब इनका इस दफा ये रमजान और फिर शव्वाल, ज़िलक़ाद, ये पूरे महीने कंटिन्यू इसी तरह ये हैं, अल्लाह करीम उन्हें भी शिफा दे, अता फरमाए। तो बाद ऐसे मरीज होते हैं कि बिल्कुल ही उनकी ये कैफियत, जी, होश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना बोल पाते हैं, ना इस तरह ना समझ रहे हैं कि कौन आया कौन गया, क्या बात करनी है, कुछ भी नहीं। तो ये भी बाद मरीजों के साथ इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। मंदिर के नाजरीन, आज के ये टॉपिक रखने की एक ये हिकमत भी थी, वजह भी थी, और हमारे पास एक वीडियो भी है, इंशाल्लाह हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कई ऐसे अफराद हैं कि जो थोड़े से ऐसे कुछ आवारजात जिनको लाइक होते हैं तो वो जमील साहब बस वक्त ये समझते हैं कि अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम पे नमाज या है नहीं है, या हम पढ़ नहीं सकते, तो बस हमें मुआफ़ी है, यानी ये उनके मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे आम सर दर्द, बुखार या इस तरह का छोटा कोई मामला आ जाए और उसके अंदर भी सुस्ती कर लेते हैं और बोलते हैं कि भी अब नमाज जो है ना वो नहीं पढ़ी जा सकती।
हमारे बुजुर्गाने दीन का अमल शफीक भाई, हम जो हमारे मुआशरे के लोग हैं इनके बिल्कुल बरक्स था। बाद बुजुर्गाने दीन के सीरत में आता है कि उनको अगर बुखार होता, तकलीफ होती, सर में दर्द होता तो नमाज की तरफ रुजू ले आते और नमाज की कसरत कर लिया करते। किसी बुजुर्ग को बुखार तशरीफ ले आया, बुखार हुआ तो वह शुक्राने में नमाज पढ़ने लगे कि मुझे वो बीमारी, वो मरहत आया है कि जो अम्बिया किराम अली सलाम को हुआ करता था। तो उनकी सोच देखें, वो शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, और हमारा हाल ये कि जरा सा बुखार हो, सर में दर्द हो, नजला छींके तो उसके अंदर नमाज को मतलब छोड़ देते हैं, बाज लोग कजा कर डालते हैं, बाज लोग बिला उजरे शरीर जमातें तर्क कर देते हैं। तो शरीयत मुताहरा ने जहाँ जहाँ जो चीजें हम पे लाजिम की हैं तो बाज सूरतों में उनके हवाले से रुख्सतें भी अता फरमाई हैं। अब हमें ये देखना है कि आया हम रुख्सत के दायरे में आ रहे हैं या नहीं,
और कितनी रुख्सत के दायरे में
आ रहे हैं। तो शरीयत मुताहरा का कोई भी मसला, यानी ऐसा नहीं है कि उसके आगे का आप कुछ भी नहीं है। आप मालूमात लें इंशाल्लाह उलमा अहले सुन्नत मुफ्तियान अहले सुन्नत इंशाल्लाह आपकी शरी रहनुमाई करेंगे, हर मुमकिन सूरत जो भी होगी आपकी कंडीशन उसके मुताबिक आपको बताएंगे कि अब आपको नमाज यूं नहीं पढ़ सकते तो अब ये तरीका है, यूं नहीं पढ़ सकते तो अब ये तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी अचकल से फैसला कर लें कि अब मैं नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो मैं बैठ के पढ़ूंगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो अब लेट के पढ़ूंगा। तो हिम्मत करें, फोन करें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें, राबता करें, इंशाल्लाह आपकी जो मौजूदा कैफियत और कंडीशन है तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक इंशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आपको रहनुमाई दी जाएगी।
नाज़रीन को हम एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद भी इसी इन्हीं मसाइल को आगे लेकर जो है वो बढ़ते हैं। जी दिखाइए वीडियो।
मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि हालत आप देख रहे हैं कि ये इस्लामी भाई खड़े नहीं हो सकते और अपने हाथ भी अपने तौर पर नहीं उठा सकते और इनके लिए आसान भी नहीं है कि कोई पतीला लेकर आए और इनको वजू करवाए, तो क्या ऐसी कैफियत में अपने पास ये कुछ छोटा सा पत्थर रख लें, ये टाइल का पीस रख लें?
मेरा जो पोजीशन है इसी सामने ही रहती है, मैं घूम नहीं।
अच्छा, ये मूव भी नहीं कर सकते तो क्या यही बैठकर ये तयम्मुम कर लें और जिस तरफ ये बैठे हैं उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं या किसी को इनको रुख तब्दील करके नमाज पढ़ाना होगा? ऐसी सूरत में कोई नमाज की क्या माफी मिल सकती है कि नमाज इस सूरत में भी पढ़नी होगी? ये खुद तयम्मुम नहीं कर सकेंगे, यानी अपना हाथ उठाकर चेहरे पर और हाथ पे नहीं भर सकेंगे, किसी और को ही अपने हाथ मिट्टी वाले या पत्थर पर लगाकर इनके चेहरे और हाथ पे मलना होगा? कि क्या इस तरह तयम्मुम हो सकता है, कोई और करवा दे कि नहीं हो सकता? इंशाल्लाह उम्मीद है आपके जवाब से बहुत सारे ऐसे जो बीमार लोग होंगे उनके लिए भी रहनुमाई का सामान।
माशाल्लाह, ये हाजी साहब अब्दुल हबीब भाई का जो प्रोग्राम है हमदर्दी के नाम, ये बतौर ख़ास ऐसे लोग के जो मुख्तलिफ किस्म के अमराज में हैं उनके पास जाना, उनकी दिलजोई करना, साथ साथ ये उनके शरी मसाइल भी इस तरह लेते हैं कि उनको हम आगाही जैसे इन तक रहनुमाई, लेकिन कई ऐसे नाजरीन होते हैं तो उन तक भी उन मसाइल की वो रहनुमाई वो पहुँचेगी। तो क्या कहते हैं ये जो मर्ज खास एक मरीज दिखाया गया कि वो कहते हैं कि मैं खुद मूव भी नहीं हो सकता और बाकी तहारत वजू के ये तो यानी खुद नहीं कर सकता, तयम्मुम भी खुद नहीं कर सकता, वो भी किसी को कराना पड़ेगा।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन भाई को शिफाए कामिल फरमाए, जो भी इनका ये मर्ज है, जो बीमारी है जिसके बायस इनके हाथ और पाँव में अब खुद ये कुछ हरकत नहीं कर पा रहे, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो अल्लाह ताला इन्हें शिफा अता फरमाए अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफेल। इनकी जो कंडीशन है उसके हवाले से जो जैसे इतना तो जाहिर है कि हाथ इनके खुद काम नहीं कर रहे, जैसे कि सवाल में पांव भी इनके काम खुद नहीं कर रहे, लग ऐसा रहा है कि इनको सहारा दे के बिठाया गया होगा।
जी
ठीक है, तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं तो वो इन्हें वजू कराएंगे, खुद इनके हाथ नहीं उठ पाएंगे वजू के लिए, तो इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो घर वाले वो इनको वजू कराएंगे।
ठीक है,
अब वजू में चेहरा धोना है तो अब वो एहतियात के जिसमें इनका बेड वगैरह भी महफूज रहे, गीला ना हो, तो इन सारी एहतियातों के साथ इनको यानी कोई टब वगैरह के जरिए चेहरे पे पानी फेरें, जो चेहरा जिस तरह चेहरे की हुदूद हैं कि बाल जहाँ से जमते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये चेहरे को वाश करें, धोएं, इसके बाद फिर इनके दोनों हाथ कोहनियों समेत धुला दें, सर पे गीला हाथ फेर दें और पांव दोनों धुला दें। तो घर के फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं तो वो अगर करवाते हैं तो इनको वजू ही करना होगा।
ठीक है,
यानी अगर कोई मरीज खुद वजू कर सकता है तो खुद करेगा, कोई खुद नहीं कर सकता दूसरा है जिसको कहकर करवा वजू कर ले तो दूसरे के जरिए वजू करें, और अगर वजू करने पे खुद भी कुदरत नहीं रखता, दूसरा वजू कराने वाला पास मौजूद नहीं है तो फिर ये सूरत होती है कि तयम्मुम करें।
ठीक है,
अब तयम्मुम के लिए कोई बर्तन वगैरह मिट्टी का, कोरी मिट्टी का बर्तन जो होता है तो वो बर्तन के जरिए तयम्मुम कर सकते हैं। अगर तयम्मुम पर किसी को खुद कुदरत नहीं है जैसे कि इनकी कंडीशन है, लेकिन ये चूंकि वजू के इम्कान मौजूद है तो इसलिए इनको वजू ही करना
ठीक है।
ठीक है, अब वो कंडीशन के जिसमें एक मरीज को ऐसी कैफियत ऐसा शदीद बुखार है कि जिसमें वजू करना भी वजू कराना भी इनके लिए बीमारी को और बढ़ा देगा, ऐसी कैफियत है कि बीमारी और बढ़ जाएगी तो वजू करने में, अब वो ठंडा पानी जरर दे तो गर्म से वजू करे, गर्म भी जरर दे, यानी पानी अगर इनकी बीमारी को और बढ़ा देगा, ये खतरा है शदीद और इनको इसका तजर्बा भी है, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत मुतारत तयम्मुम का हुक्म देती। तो अगर कोई मौजूद है वजू कराने वाला तो वजू कराए, वजू कराना अगर दुश्वार हो और बीमारी बढ़ा दे, सबब बने पानी का इस्तेमाल, तो अब तयम्मुम होगा। और तयम्मुम अब ये खुद कर सकते हैं तो खुद करें, और जो वीडियो में कंडीशन बताई जा रही है तो उसमें मुमकिन है कि ये खुद नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा इनको तयम्मुम करवाएगा। तयम्मुम के अंदर तीन चीजें अहम तरीन रुकून है, एक है नीयत,
ठीक है,
कि मैं पाकी हासिल करना चाहता हूँ, ये नीयत कर लें कि मैं इस तयम्मुम के जरिए नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये पाकी की नीयत कर लें, नमाज पढ़ने की नीयत कर लें।
अब ये अगर दूसरे जब करवाना है तो ये नीयत इसकी या उसकी, हाँ, किसकी,
जो तयम्मुम करवाएगा उसकी नीयत का एतबार नहीं,
जिसका तयम्मुम हो रहा है,
जिसका तयम्मुम जिस मरीज
जो पाकी हासिल कर रहा है,
जो जिस मरीज का तयम्मुम करवाया जा रहा है उसको ये नीयत करनी होगी,
ठीक है,
कि मैं पाकी हासिल करने की नीयत से तयम्मुम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं नमाज पढ़ूंगा इसलिए तयम्मुम कर रहा हूँ, ये नीयत करें। इसके बाद दूसरा फर्ज है चेहरे का मसह करना, तीसरा फर्ज है दोनों हाथों का कोनियों समेत मसह करना। तो अब जो भी तयम्मुम कराए, मिसाल के तो अभी इसमें तो एक लेमिनेशन है, कोरा जो बर्तन होता है आमतौर पे थाल वगैरह होते हैं मिट्टी के, तो उस पे जो भी तयम्मुम करवा रहा है वो अपने दोनों हाथों को उस पे तीन दफा जर्ब करेगा, मारेगा, इसके बाद फिर इस मरीज के चेहरे पर वो मसाह करेगा। मसाह इस अंदाज में करना है कि कोई भी हिस्सा जो वजू में चेहरे में धोया जाता है वो हाथ फिरने से ना रहे, तो इस तरह इनके चेहरे पे मसाह करें। इसके बाद फिर दोबारा तीन दफा अपने हाथों को उस मिट्टी के बर्तन पे मारेंगे और फिर इनके मरीज के हाथों पर फेर देंगे, ठीक, उसके बाद फिर उल्टे हाथों फेर देंगे। इसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि कोई हिस्सा ऐसा, बाल वगैरह भी ऐसे ना रहें कि जिनका धोना जरूरी था और उनपे हाथ ना फिरा,
हाथ ना फिरा,
तो अच्छी तरीके से हाथ फिरा
होना उस जमीन पर, अपना वो जो जो भी पत्थर लिया था या जिससे भी तयम्मुम कर रहे उस पर मिट्टी होना, गर्द
मिट्टी होना जरूरी नहीं है,
ठीक है।
जैसे एक यूं भी किया जा सकता है कि संगे मरमर की कोई एक टाइल चोको
ले लें, मिट्टी के जिन,
ठीक है, तो संगे मरमर की एक टाइल ले लें, एक फीट स्क्वायर फीट वाली चौकोर सी, तो वो भी आराम उस पे भी हाथ मार के तयम्मुम किया जा सकता है।
जो पत्थर की हो, जैसे शीशे की तैब इस तरह की ना हो,
ऐसी
दूसरी
तो नॉर्मल हो। तो अब इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज, जैसे कि हमारे इन भाई के बताया गया है, तो अगर ये चेहरा धुलवाया जा सकता है, वुजू करवाया जा सकता है, तो इनको वुजू ही करना होगा, तयम्मुम की इजाजत नहीं मिलेगी। खुद कर सकते हैं तो खुद नहीं कर सकते तो कोई दूसरा वुजू कराए, ना खुद कर सकते हैं ना दूसरे के कराने से वुजू हो सकता है। इसकी सूरत क्या बनेगी कि मिसाल के तौर पे कोई है ही नहीं, नमाज का वक्त भी हो चुका है, अब ये तयम्मुम कर सकते हैं तो तयम्मुम करें, ठीक है। एक सूरत है कि बीमारी बढ़ जाएगी, इस वजह से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अब तयम्मुम किया जाएगा, खुद कर सकते हैं तो खुद तयम्मुम करना होगा, खुद तयम्मुम नहीं कर सकते तो कोई दूसरा करवाएगा तयम्मुम। और अगर ऐसा हो कि
कुछ भी
ना ये खुद कर सकते हैं ना दूसरा करवा सकता है, तो अब ऐसी सूरत में ये जितना मुमकिन हो अपने चेहरे को दीवार पे या संगे मरमर की टाइल मिसाल के तौर पे उस पे जितना ये मुमकिन हो इनके लिए ये तयम्मुम की नीयत से उस पे अपने चेहरे को फेरें, हाथ को फेरें जितना मुमकिन हो, तो इनको तयम्मुम करना होगा। अब रहा मामला ये कि इनका जैसे वुजू हो गया, वुजू की सूरत बनती है या तयम्मुम,
यहाँ पे ये भी नहीं कि जैसे एक तो घर के अंदर कोई दूसरे अफराद मौजूद भी हों, इनका भी कुछ और भी इस तरह के जो आए मसाइल, तो उसमें बात करिए कि घर पे भी नहीं है, उनको कोई पकड़ कर किबले की तरफ मूव करने वाला भी नहीं है, आप बैठे हुए हैं, अब किबला इस तरफ है, ठीक है, अब यूं है तो यूं ये रहना, और एक मरीज है बिल्कुल घुटने खड़े हैं तो वो इसी तरह उनको बिठा दिया गया, अब जब दिल करे बस वो गिर जाएंगे, फिर कोई अगर आ गया तो ठीक है तो फिर उनको कोई बिठा देगा, लेकिन घुटने उनके ऐसे ही फोल्ड जैसे हैं, तो अब कोई मूव करने वाला नहीं है, तो किबले के हवाले से भी कोई रुख्सत मिलेगी?
अब इसके अंदर ये है कि कोई आदमी इस्तकबाले किबला की जहां तक मामला है जो कर सकता है,
तो उसको किबले की तरफ रुख करना होगा। उसकी एक सूरत यह है कि अगर किबला दाई तरफ है तो दाई करवट पे लेट जाए, बाई करवट है तो बाई करवट पे लेट जाए, और वरना यानी लेट के नमाज पढ़ने की सूरत में या इस अंदाज में अपने बेड को लगाए कि इसका जो पाँव का रुख है वो किबले की जानिब हो, लेकिन पाँव को ये फोल्ड कर ले और अपने सर के नीचे कोई तकिया वगैरह ज्यादा लगा ले ताकि उठा हुआ हो और इसका सीना हत्तल इम्कान काबतुल्ला शरीफ की तरफ हो। अब मिसाल के तौर पर जो हमारे भाई जिनकी वीडियो में दिखाया गया अब्दुल हबीब भाई ने जिनका सवाल पूछा है, तो अब इन्हीं को हम सामने रख के इस मसले का जवाब देते हैं। तो अगर ये जैसे बैठे हैं
सही है,
अब इनकी बॉडी से ऐसा लग रहा है कि शायद ये रुकू भी नहीं कर पाएंगे।
जी जी
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इनके घर वालों ने वुजू करवा दिया या जिन सूरतों में तयमुम की गुंजाइश थी तयमुम करवा दिया, अब इस सूरत में अब ये किबले की जानिब इनको लेटा दें या इनके लिए बैठना मुमकिन है?
जी जी।
जिसके लिए जिस मरीज के लिए बैठना मुमकिन हो
वो लेट के नहीं पड़ेगा,
वो लेट के नहीं पड़ता।
सही है।
अब बैठने की सूरत क्या है, जैसे इनके वीडियो से जाहिर था कि ये बैठ सकते हैं।
जी हाँ।
अब इन्होंने पीछे कोई तकिया लगाया होगा, कुछ सहारे होंगे।
जी जी।
इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को रोक लिया। तो अगर कोई मरीज ऐसा है कि जो बैठ सकता है, बैठ के नमाज पढ़ सकता है, तो वो रुक फिर वो लेटेगा नहीं।
सही।
तो अब इनके घर वाले इनको बैठ कर इनको बिठा दें किबले की जानिब रुख करके, अब वो चाहे कुर्सी पे बिठा दें या जैसे बेड पे थे तो बेड पे बिठा दें और कोई सहारे के लिए तकिया वगैरह की चीज लगा दें। अब ये अपने हाथ को ऊपर नहीं कर सकते तो ये हाथ उठाना सुन्नत है, तकबीर तहरीमा फर्ज है, तो ये अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दें,
तकबीर तहरीमा होगी, नमाज शुरू कर
दें, नमाज शुरू कर दें, सूरह फातिहा व दीगर सूरत पढ़ें। अब मामला आएगा रुकू का, तो ये रुकू के लिए थोड़ा झुकें, जितना इनके लिए झुकना मुमकिन रुकू के लिए झुकें, रुकू की तस्बीहात पढ़ें, रुकू से उठें, सजदे में रुकू के मुकाबले में ज्यादा झुकें, तो ये ज्यादा झुक गए, दोनों सजदे कर लिए और इस तरह अपनी ये दो रकात चार रकात जो भी इनको पढ़नी होती है ये पढ़ेंगे। तो अगर किबला रुख होना यानी मुमकिन है, जितना जिसके लिए मुमकिन है उसको किबले ही की जानिब रुख करके नमाज पढ़नी होगी। अलबत्ता बाज मरीज ऐसे होते हैं कि जो यानी इतने आजिज हो चुके होते हैं कि वो अपने जिस्म को जरा सा भी हरकत नहीं दे सकते, हिम्मत ताकत उसमें जाती रहती है, तो अब उसमें यह है कि वहां अगर कोई मौजूद है तो वो इनको समते किबला करा सकता है, तो ये किबले की जानिब होने का उनको कह दें कि मुझे किबले की जानिब कर दें। अगर कोई भी नहीं है जो इन्हें समते किबला की जानिब कर सके और ये खुद भी इनमें हिम्मत नहीं है कि अपना रुख नमाज के लिए किबले की जानिब कर पाए, तो फिर शरीयत मुताहरा ने इनको ये रियायत दी है कि जहां पे भी इनका रुख है
जिस तरह
ये नमाज पढ़ सकते हैं। और इस तरह की कंडीशंस में जब ये अल्लाह करे ये मरीज सही हो जाएं, तो सही होने की सूरत में इन पर गुज़श्ता जो टाइम पीरियड एक आजमाइशी गुजरा है और इनमें जो नमाजें इन्होंने पढ़ी हैं बीमारी की हालत में, तो इन नमाजों की कजा इन पे लाजिम नहीं है।
ठीक है, हो जाएंगी वो नमाज,
तो नमाजें यानी उन नमाजों का इयादा उन पे लाजिम न, कजा नहीं, उन नमाजों का इयादा उन पे लाजिम नहीं है। जो मरीज जिस कंडीशन में नमाज पढ़ने की कुदरत और इस्तेआत रखता है और उस कंडीशन में वो नमाज के शराइत के मुताबिक नमाज पढ़ता रहा, तो वो नमाजें उसकी हो जाएंगी, बाद सेहत उन नमाजों का इयादा जरूरी नहीं।
ठीक है, माशाल्लाह। उमर साहब जो है कई मदरसा के नाज़रीन की कॉल्स भी हैं।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि मेरी अम्मी जान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती और बैठ कर पढ़ती हैं और आगे टेबल रखकर पढ़ती हैं और हाथ टेबल पर रखकर सजदा उस पर करती हैं, किस तरह उनका सजदा हो जाता है, बताए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं।
ठीक है, एक और कॉल।
आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है कि जब हम चार रकात वाली फर्ज नमाज पढ़ रहे हो जैसा कि जोर की नमाज, तो क्या हम आखिरी दो रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
माशाल्लाह। ये एक सवाल जो पूछा कि वालिदा नमाज खड़े होकर वो नहीं पढ़ सकती और सजदे करने के लिए सामने वो एक टेबल रखती है, ये कईयों का ये मसला होता है और मैं चाहूँगा इंशाल्लाह कभी सिलसिले में हम शुरू में ही बाकायदा कुर्सी रखकर उसकी नमाज का एक प्रैक्टिकल वो पूरा कि कब कब उसको खड़े होकर कब बैठने की इजाज़त, कब सजदा उस पर तर्क हो रहा है यानी सजदे की उस पर रुख्सत है तो अब कुर्सी पर उसको कब इजाज़त होगी,
लेकिन आम चले एक नॉर्मल जो कुर्सी पर जिसको पढ़ने की इजाजत है या सोफे पे चार पाई पे वो पढ़ रहा है, और अब उसके लिए क्या लाजमी है सामने कोई टेबल रखे, या जिस तरह मसाजिद के अंदर भी तख्ते वाली कुर्सियां होती हैं जो पहले पेपर देने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब ऐसा तो ये लाजमी है क्या?
जैसे मिसाल के तौर पर मेरे सामने डाई से टेबल है,
बहुत नीचे ही है ना,
नीचे है
जी,
तो नीचे हो ऊपर हो तो नमाजी के लिए सजदा के इशारे के लिए कोई चीज सामने टेबल कुर्सी के आगे कोई डाइस वगैरह होना जरूरी नहीं है।
सही,
ठीक है। तो वो रुकू करेगा, रुकू के बाद जब सजदे का मरहला आएगा उसमें सजदे में रुकू के मुकाबले में ज्यादा झुकेगा, बस ये इनके ऊपर लाजिम है। हाथ रखना जो आगे डाइस है तख्ता है उस पर हाथ रखना, बाद पेशानी भी टिका देते हैं, तो ये रखना कुछ जरूरी नहीं है। अब मामला यह है कि अचानक अगर तख्ते पे किसी ने पेशानी रख ली, हाथ भी रख लिया और उस पर वो पेशानी टिका भी देता है, तो आया इस तरह नमाज हो जाएगी, तो इससे नमाज पे कोई हरज लाजिम नहीं आता। मतलब ये हो
तो ये तख्ता आमतौर पे होता उतना ही है कि रुकू से ज्यादा ही झुक जाता है, रुकू में जितना झुके उससे ज्यादा कुछ झुके, बस ये जरूरी है।
हाँ, तो ये जो चीज जरूरी थी वो इसमें पाई जाती है, लेकिन ये तख्ता सामने होना कुछ जरूरी नहीं है, इसके ऊपर सजदा कर लेने से नमाज पे कोई हरज भी वाकई नहीं होता। हाँ, एक सूरत है जो जायज नहीं है, हदीस मुबारका में इस चीज से मना किया गया है कि एक आदमी जब बैठ कर नमाज पढ़ने की सूरत में वो सजदा कर रहा हो तो सजदा करते हुए वो तकिया हाथ में ले ले और यूं सजदा करें,
सही,
या कोई लकड़ी हाथ
खुद ले रहा है, लकड़ी तक
कोई चीज पकड़ के लकड़ी लेके उसके ऊपर माथे पे उस लकड़ी पे अपना पेशानी टिकाए, इस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और एक नमाजी को जब हुजूर ने इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा, वो तकिया उससे ले लिया, फिर उसने लकड़ी पकड़ के नमाज पढ़ने वो लकड़ी भी ले ली, तो इसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता ऐसी चीज के जो नमाजी ने उठाई भी नहीं है, तो आमतौर पर डाइस वगैरह जो होती है तख्ते जो होते हैं वो आदमी उसको उठाया हुआ नहीं होता,
ठीक है,
तो उस पर अगर पेशानी रख दे तो उससे नमाज पे कोई हरज वाके नहीं होता, क्योंकि आदमी उसको उठाया हुआ नहीं,
ठीक है, उठाया हुआ नहीं, पहले से ही रखी हुई है और उसमें कोई किसी के हर्ज वाली। चार रकत वाली नमाज आखिरी दो रकतों में सूरतें पढ़ना,
आखिरी फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी में किरात करना वाजिब नहीं है, ताहम अगर कोई किरात सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला भी लेता है तो इसमें कोई हरज भी नहीं,
हरज भी नहीं, और अकेले पढ़ रहे हैं तो बेहतर है मिला भी
अकेले
नहीं।
वाले सूरत में लिखा है उलमा ने कि बेहतर है कि वो सूरत मिला ले।
माशाल्लाह, मदचन के नाज़रीन, अल्लाह करीम हम सबको दुरुस्त तरीके से नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों पर पाबंदी और इस्तिकामत भी हमें नसीब फरमाए।
जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है, हमको रब से मिला है, चलो पूछे कैसे जिए ज़िंदगी को, चलो पूछे।